काली शक्तियों के मालिक को तपस्वी महाराज ने अपनी शक्तिशाली शक्तियां दे दी थीं, किंतु अपनी शक्ति का एक हिस्सा उसने सर्प महाराज को भी दे दिया था, क्योंकि उस तपस्वी को उस काली शक्तियों के मालिक की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी शक्तियों से पृथ्वी लोक या किसी और लोक को कोई नुकसान पहुंचे। वहीं दूसरी ओर जिन महाराज ने अमन, मान और करिश्मा को समझा दिया था कि तारा की शादी दोनों भाइयों से करा दो। थोड़ी सी बहस के बाद वे सब तैयार हो गए थे। जिन महाराज ने करिश्मा जी को एक फल दिया था और बोले थे, इस फल को तारा को खिला देना और फिर शादी की बात करना। ये फल उसे वश में करने के लिए नहीं था, ये फल तो केवल उसे करिश्मा की बात समझने के लिए था, करिश्मा की बात पर यकीन करने के लिए था, क्योंकि तारा परी से शादी की बात करने के लिए करिश्मा को उसे अपना और अपने बेटों का सच बताना था, क्योंकि बिना उन दोनों का सच बताए वो उसकी शादी उनसे नहीं करा सकती थी और जिन महाराज ने भी उसे यही हुक्म दिया था। सो करिश्मा जी ने देखा था कि तारा सोई हुई है, तो वो वहां से वापस जाने के लिए पलट गई थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, तारा की खिड़की पर एक बार फिर से काली बिल्ली बैठी दिखाई दी। तारा, जो कि सो नहीं रही थी, केवल सोने की एक्टिंग कर रही थी, काली बिल्ली को देखकर सोचने लगी कि ये बिल्ली उसने कहाँ देखी थी। लेकिन जल्दी ही उसे याद भी आ गया कि ये बिल्ली उस हवेली में आई थी, जो बाद में बिल्ली के रूप को बदलकर एक खूबसूरत हसीना बन गई थी। उस काली बिल्ली को देखकर करिश्मा जी काफ़त परेशान हो गईं। तब मान ने उन्हें कहा, क्या हुआ मॉम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तब करिश्मा जी बोली, बेटा, ये बिल्ली यहाँ कहाँ से आ गई? तब मान बोला, ओ मॉम, आप तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हैं, ये बिल्ली ही तो है, आ गई होगी कहीं से। तब करिश्मा जी बोली, नहीं बेटा, कोई भी काली चीज़ तारा या तुम दोनों के आसपास हो तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। तुम्हें याद नहीं, जिन महाराज ने कहा था बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम दोनों पर और तिलस्मी पत्थर पर। अब जल्द से जल्द मुझे तुम दोनों की शादी करानी होगी, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। जिन महाराज ने कहा है तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। कुछ सोचकर करिश्मा जी तारा परी की ओर देखने लगी। काली शक्तियों के मालिक को तपस्वी महाराज ने अपनी शक्तिशाली शक्तियाँ दे दी थीं, किंतु अपनी शक्ति का एक हिस्सा उसने सर्प महाराज को भी दे दिया था, क्योंकि उस तपस्वी को उस काली शक्तियों के मालिक की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी शक्तियों से पृथ्वी लोक या किसी और लोक को कोई नुकसान पहुंचे। वहीं दूसरी ओर जिन महाराज ने अमन, मान और करिश्मा को समझा दिया था कि तारा की शादी दोनों भाइयों से करा दो। थोड़ी सी बहस के बाद वे सब तैयार हो गए थे। जिन महाराज ने करिश्मा जी को एक फल दिया था और बोले थे, इस फल को तारा को खिला देना और फिर शादी की बात करना। ये फल उसे वश में करने के लिए नहीं था, ये फल तो केवल उसे करिश्मा की बात समझने के लिए था, करिश्मा की बात पर यकीन करने के लिए था, क्योंकि तारा परी से शादी की बात करने के लिए करिश्मा को उसे अपना और अपने बेटों का सच बताना था, क्योंकि बिना उन दोनों का सच बताए वो उसकी शादी उनसे नहीं करा सकती थी और जिन महाराज ने भी उसे यही हुक्म दिया था। सो करिश्मा जी ने देखा था कि तारा सोई हुई है, तो वो वहां से वापस जाने के लिए पलट गई थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, तारा की खिड़की पर एक बार फिर से काली बिल्ली बैठी दिखाई दी। तारा, जो कि सो नहीं रही थी, केवल सोने की एक्टिंग कर रही थी, काली बिल्ली को देखकर सोचने लगी कि ये बिल्ली उसने कहाँ देखी थी। लेकिन जल्दी ही उसे याद भी आ गया कि ये बिल्ली उस हवेली में आई थी, जो बाद में बिल्ली के रूप को बदलकर एक खूबसूरत हसीना बन गई थी। उस काली बिल्ली को देखकर करिश्मा जी काफ़ी परेशान हो गईं। तब मान ने उन्हें कहा, क्या हुआ मॉम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तब करिश्मा जी बोली, बेटा, ये बिल्ली यहाँ कहाँ से आ गई? तब मान बोला, ओ मॉम, आप तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हैं, ये बिल्ली ही तो है, आ गई होगी कहीं से। तब करिश्मा जी बोली, नहीं बेटा, कोई भी काली चीज़ तारा या तुम दोनों के आसपास हो तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। तुम्हें याद नहीं, जिन महाराज ने कहा था बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम दोनों पर और तिलस्मी पत्थर पर। अब जल्द से जल्द मुझे तुम दोनों की शादी करानी होगी, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। जिन महाराज ने कहा है तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। लेकिन तारा परी अभी भी बेहद गहरी नींद में थी या होने की एक्टिंग कर रही थी। तारा परी मन ही मन सोचने लगी कि अब उसे जाग जाना चाहिए, कहीं एक्टिंग के चक्कर में ये लोग वापस ही ना चले जाएं और करिश्मा जी अपने बेटों की शादी किसी और से ना करा दें। ये सोचकर तारा परी अपने हाथ पैरों में मूवमेंट करने लगी। तारा परी को हल्का सा उठता देख वे तीनों माँ बेटा चुप हो गए और थोड़ा आंखों मिलाकर पानी पीने के बहाने से तारा परी उठ बैठी और साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाने लगी। तभी टेबल के पास उसे अमन खड़ा हुआ दिखाई दिया और वो अपनी नींद भरी आवाज में बोली, अमन सर, आप यहाँ इतनी रात को? और वो अमन को देखती हुई उठकर खड़ी हो गई। तारा को पता था कि उसके पीछे मानसिंह राठौर खड़ा है, इसलिए तारा परी ने अपनी इंसानी फितरत चालू रखी कि इस सिचुएशन में कोई नॉर्मल लड़की किस तरह से रिएक्ट करती। तारा परी भी उसी तरह से रिएक्ट कर रही थी। तभी वो अमन से बोलने लगी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? ऐसे बोलते हुए वो पीछे की ओर उल्टा चलने लगी और फिर वो अमन से बोली, देखिए सर, अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोची तो मैं शोर मचा दूंगी और करिश्मा मैम को बुला लूंगी, आप जाइए यहाँ से। और वो अभी कुछ और ही कहना चाहती थी कि बोलते बोलते वो मान से टकरा गई और वो जैसे ही गिरने वाली थी मान ने उसे गिरने से बचा लिया। कुछ पल के लिए उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को करीब देखकर अमन के अंदर कुछ जलन सा लगा। तभी तारा परी सीधी खड़ी हो गई और मान को देखकर बोली, आप भी यहाँ हैं? तब तारा परी अपनी आवाज थोड़ा तेज करते हुए बोली, आप दोनों भाई मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तभी करिश्मा जी जानबूझकर थोड़ा सा खांसने लगी ताकि तारा परी की नजर उन पर भी पड़ जाए। और जैसे ही तारा परी ने करिश्मा जी को देखा, वो एकदम से भागती हुई सी उनके पीछे जा खड़ी हुई, मानो एक अकेली लड़की के कमरे में दो लड़कों को देखकर उसे डर लग रहा हो। तब करिश्मा जी ने तारा परी का हाथ पकड़ा और उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फेरा और बोली, बेटा डरो मत, ये दोनों तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये दोनों मेरे साथ यहाँ तुम्हारे कमरे में आए हैं। तारा परी बोली, मैम आपके साथ आए? मतलब मैं कुछ समझी नहीं मैम। तब करिश्मा जी बोली, बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुझे सब समझाती हूँ। ऐसा कहकर करिश्मा जी ने तारा परी का हाथ पकड़ा और उसे इस बंगले के शानदार हॉल में ले आई। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक तपस्वी से शक्तियां हासिल करने के बाद सर्प महाराज के साथ काली पहाड़ी की ओर बढ़ गया था और उसे वापस उन्हीं जंगलों से होकर गुजरना था। सो वे दोनों एक साथ वापस आ रहे थे। अब काली शक्तियों के मालिक के अंदर शक्ति के साथ साथ बहुत सारा घमंड भी आ चुका था। अब तो वो इंसानों को इंसान भी नहीं समझ रहा था। उसे लग रहा था अब तो वो वापस जाकर अमन और मान पर हमला कर देगा और उनकी सारी शक्तियां छीनकर उनसे तिलस्मी पत्थर हासिल कर लेगा। अब तो वो उन्हें आसानी से हरा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो सच का पता लगाने के बहाने से आपने मुझे यहाँ भेज दिया था। सर्प महाराज जो कि उसके साथ साथ था, वो उसकी सारी बकवास चुपचाप सुन रहा था।
वो उसे अभी कुछ नहीं कहना चाहता था, वरना उस काली शक्तियों के मालिक को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वो सर्प जो इस वक्त उसके साथ साथ चल रहा था, वो पनक झपकते ही उसे हराने का दम रखता था। वे दोनों काली पहाड़ी पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी उस काली शक्ति के मालिक को कुछ लकड़हारे दिखाई दिए जो अपने जीवन निर्वाह के लिए लकड़ी लेने उस जंगल में आए थे। वे तकरीबन 10-12 लोग थे, जिनमें कुछ औरतें और कुछ मर्द थे। काली शक्तियों का मालिक अब तो अपनी ताकत के नशे में चूर था, तो उसने उन लकड़हारों पर अपनी ताकत आजमाने की सोची। उन लकड़हारों में एक बड़ी ही खूबसूरत युक्ति थी जिसका नाम प्रेमा था। वो काली शक्तियों का मालिक अचानक उन लोगों के पास जा पहुंचा। अचानक से एक आदमी के इस तरह से उनका रास्ता रोकने पर उन लकड़हारों में जो एक आदमी था वो आगे आया और बोला, कौन हो तुम और ये क्या हरकत है, क्यों रास्ता रोका तुमने हमारा? तब वो काली शक्तियों का मालिक कहने लगा, मुझे तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे वो युवती चाहिए। ये बात सुनकर वे लोग आग बबूला हो उठे और बोले, ये क्या कह रहे हो तुम, होश में तो हो, क्या पीकर आए हो तुम? उस वक्त वो काली शक्तियों का मालिक और वो सर्प महाराज दोनों ही मामूली इंसानी वेश में थे, सो लकड़हारों को उनसे कोई डर नहीं लग रहा था। बस अचानक से उनके सामने आ जाने पर और उनका रास्ता रोकने पर वे लोग गुस्से में थे। तब वो काली शक्तियों का मालिक एक बार फिर से बोला, क्या तुम्हें सुना नहीं हमने तुम्हें क्या हुक्म दिया है? उस लड़की को मेरे पास भेजो, वो भी अभी। ये सुनकर उन लकड़हारों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और उनमें से कुछ ने उसे मारने के लिए कुछ बड़ी बड़ी सी लकड़ियां उठा ली थीं।